नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू। पांचवें चरण के चुनाव के लिए पर्चे भरने का आज आखिरी दिन। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में बारिश से जुड़ी घटनाओं में मृतकों की संख्या बढ़कर 60 हुई। जेट एयरवेज द्वारा अपनी उड़ानों पर अस्थायी रोक के बाद नागरिक उड्डयन सचिव हवाई अड्डा और एयरलाइंस अधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है। इस चरण में 11 राज्यों और एक केंद्र शासित क्षेत्र में लोकसभा की 95 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दूसरे चरण में 97 सीटों के लिए मतदान होना था। पैसे के अत्यधिक दुरुपयोग के आरोपों के कारण तमिलनाडु में वेल्लोर का चुनाव रद्द कर दिया गया है। कानून व्यवस्था संबंधी चिंताओं के कारण पूर्वी त्रिपुरा लोकसभा सीट का मतदान तीसरे चरण में होगा। तमिलनाडु में 38, कर्नाटक में 14, महाराष्ट्र में 10, उत्तर प्रदेश में 8, असम, बिहार और उड़ीसा में 5-5, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में 3-3, जम्मू कश्मीर में 2 तथा मणिपुर और पुद्दुचेरी में 1-1 सीट के लिए वोट डाले जा रहे हैं। तमिलनाडु में विधानसभा की 18 सीटों के उपचुनाव के लिए भी मतदान आज हो रहा है। महाराष्ट्र में कुल 179 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। प्रमुख उम्मीदवारों में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान और सुशील कुमार शिंदे शामिल हैं। कर्नाटक में 14 लोकसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 241 उम्मीदवार मैदान में हैं।
मतदान की संख्या बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने कई प्रचार सभाओं को आयोजित किया है। बेंगलुरु उत्तर में सबसे ज्यादा और उड़पी चिकमंगलूर में सबसे कम मतदाता हैं। राज्य में लिंग अनुपात भी सुधरा है। 1000 पुरुष मतदाताओं में महिला मतदाताओं की संख्या पिछले साल के 972 से इस बार 979 तक बढ़ा है। उड़पी चिकमंगलूर, दक्षिण कन्नड़ा, तुमकुर, मंडिया, मैसूर में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से भी ज्यादा है। देवेगौड़ा, सदानंद गौड़ा, वीरप्पा मोइली, केएच मुनियप्पा और बीके हरि प्रसाद का भविष्य आज तय होगा। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी, रायगंज और दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान हो रहा है। इस चरण में 42 उम्मीदवार मैदान में हैं। 49 लाख से अधिक मतदाता मतदान कर सकेंगे। इस बीच निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ अधिकारी अजय वी नायक को पश्चिम बंगाल के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। आयोग राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए पहले ही विवेक दुबे को विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त कर चुका है। बिहार में दूसरे चरण में पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर और बांका लोकसभा सीट के लिए मतदान हो रहा है। ताजा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र के पास। धर्मेंद्र, मतदान की क्या स्थिति है और कैसा उत्साह दिखाई पड़ रहा है मतदाताओं में?
कनक, मैं यहाँ किशनगंज शहर के मतदान केंद्र संख्या 226 पर सूर्य बस्ती इलाके में हूँ और यहाँ सुबह से ही मतदाताओं की लंबी भीड़ देखी जा रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं और बुजुर्ग मतदाता यहाँ आए हुए हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे और मतदान अभी शुरू हो चुका है। लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और एक दिव्यांग मतदाता से भी मेरी बात हुई। उन्होंने अपना काफी उत्साह दिखाया और कहा कि वे अच्छा जनप्रतिनिधि और अच्छी सरकार चुनने के लिए मतदान करने के उद्देश्य से आए हैं। भले वे दृष्टि बाधित है लेकिन उनमें काफी उत्साह है। जी कनक,
धन्यवाद। धर्मेंद्र, उत्तर प्रदेश में अमरोहा, अलीगढ़, मथुरा, फतेहपुर सीकरी, नगीना, बुलंदशहर, हाथरस और आगरा सीट के लिए मतदान हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस चरण में 85 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है।
2014 के लोकसभा चुनाव में इन सभी 8 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी और इस बार भी पार्टी ने मतदाताओं को रिझाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। वहीं सपा, बसपा और आरएलडी गठबंधन ने भी चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरी ओर कांग्रेस ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश की है। मथुरा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। मथुरा से अभिनेत्री हेमा मालिनी दूसरी बार चुनाव लड़ रही हैं और उनका मुकाबला राष्ट्रीय लोकदल के नरेंद्र सिंह और कांग्रेस के महेश पाठक से है, जबकि फतेहपुर सीकरी क्षेत्र से उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर किस्मत आजमा रहे हैं। यहाँ भाजपा ने राजकुमार चाहर को टिकट दिया है। वहीं गठबंधन की तरफ से बसपा के भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित चुनावी मैदान में हैं। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, मथुरा।
असम में कुछ स्थानों पर वेबकास्टिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की गई है। दिव्यांगजनों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुगम मतदान के विशेष इंतजाम किए गए हैं। मणिपुर में भीतरी मणिपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान जारी है। छत्तीसगढ़ में माओवाद प्रभावित 3 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
छत्तीसगढ़ के 3 लोकसभा क्षेत्रों कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। शहरी इलाकों में पोलिंग बूथों के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। इन 3 संसदीय क्षेत्रों के कुछ इलाके माओवाद से प्रभावित हैं। ऐसे 5 विधानसभा क्षेत्रों और गरियाबंद जिले में आने वाले बिंद्रा नवागढ़ इलाके के 6 पोलिंग बूथों में मतदान दोपहर 3 बजे तक चलेगा। वहीं बाकी के 13 विधानसभा क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। प्रदेश में दूसरे चरण के लिए हो रहे इस मतदान में 49 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
निर्वाचन आयोग ने ईवीएम में गड़बड़ी सहित विभिन्न कारणों से अरुणाचल प्रदेश में 19 मतदान केंद्रों पर 20 अप्रैल को पुनर्मतदान के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल संसदीय लोकसभा क्षेत्र से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के सामने होंगी। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज उधमपुर और श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए 24 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला सहित 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस ने यहां से कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। भाजपा से डॉ जितेंद्र सिंह उधमपुर से फिर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए लोकसभा के दूसरे चरण में लोगों से भारी मतदान की अपील की है। अपने संदेश में श्री मोदी ने आशा व्यक्त की है कि अधिक से अधिक युवा वोट डालेंगे।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आम चुनाव से संबंधित विशेष चर्चा जनादेश 2019 प्रसारित कर रहा है।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रतिदिन शाम 4:05 से 4:30 तक सुना जा सकता है।
लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए पर्चे भरने का आज आखिरी दिन है। इस चरण में 7 राज्यों के 51 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 6 मई को मतदान होगा। नामांकन पत्रों की जांच शनिवार को की जाएगी और सोमवार तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। बिहार में 5वें चरण के लिए कल 19 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किये। उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता अपना नामांकन दाखिल करेंगे। एक रिपोर्ट।
सपा बसपा गठबंधन की ओर से पूनम सिन्हा को लखनऊ संसदीय सीट से वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद यहां चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा आज नामांकन दाखिल करने से पहले लखनऊ में रोड शो भी करेंगी। लखनऊ सीट पर नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तारीख है और यहां से कांग्रेस प्रत्याशी आचार्य प्रमोद कृष्णम भी पैदल मार्च निकालने के बाद अपना पर्चा दाखिल करेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज आजमगढ़ लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी भी आज सुल्तानपुर लोकसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल करेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में अमरेली, कर्नाटक में बागलकोट, चिकोडी और केरल में तिरुअनंतपुरम में रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह छत्तीसगढ़ में रायगढ़, बिलासपुर और महाराष्ट्र में जालना में रैली करेंगे, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में बदायूं और गुजरात में जूनागढ़ तथा कच्छ में जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में मृतकों की संख्या 60 हो गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में अगले 24 घंटे के दौरान गरज के साथ छींटे पड़ने और वर्षा होने का अनुमान है। विमान में यात्री क्षमता, स्थान और यात्री सुविधा से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए नागर विमानन सचिव प्रदीप सिंह खरोला आज हवाई अड्डे और एयरलाइंस के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। एक रिपोर्ट।
ये बैठक कल जेट एयरवेज द्वारा अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से रद्द करने के फैसले के बाद हो रही है। नागर विमानन महानिदेशालय और अन्य नियामक स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए हैं ताकि किराया वापसी, टिकट रद्द करने और वैकल्पिक बुकिंग से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके। मंत्रालय के अनुसार यात्री शिकायतें विमान सेवा पोर्टल या मोबाइल ऐप पर तुरंत डाली जानी चाहिए ताकि मंत्रालय ऐसी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई कर सके। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
आईपीएल क्रिकेट में कल हैदराबाद में खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। 133 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 16 ओवर और 5 गेंदों में 4 विकेट पर 137 रन बनाए। आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच नई दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में रात 8 बजे से खेला जाएगा। चीन के निंगबो में आज से एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता शुरू हो रही है। 10 दिन की इस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर भारतीय भारोत्तोलक वर्ष 2020 के ओलंपिक में अपनी जगह बनाने का प्रयास करेंगे। शीर्ष भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने पुरुषों की 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में फिर से विश्व में पहला स्थान हासिल कर लिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
धन्यवाद कनक। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज और देश के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश तथा आंधी आज के अखबारों की अहम सुर्खियां हैं। हिंदुस्तान की पहली खबर है 12 राज्यों की 95 सीटों पर मतदान आज। दैनिक जागरण लिखता है मतों का महादान आज। दैनिक भास्कर ने हर वोट का वजन है शीर्षक से बंगाल के सबसे ऊंचे पोलिंग बूथ तक पहुंचने के लिए ईवीएम और वीवीपैट पीठ पर लाद कर ले जाते मतदान कर्मियों का चित्र दिया है। पत्र ने मणिपुर के दो क्षेत्रों में सभी 78 बूथ महिलाओं द्वारा संभालने का समाचार भी दिया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लखनऊ लोकसभा सीट पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह के मुकाबले सपा में शामिल शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा के मैदान में उतरने की खबर दी है। अमर उजाला ने भोपाल में दिग्विजय के मुकाबले साध्वी प्रज्ञा के खड़े होने को रोचक मुकाबला कहा है। वीर अर्जुन लिखता है प्रज्ञा ठाकुर देंगी दिग्विजय को टक्कर। मंगलवार को थामा था भाजपा का दामन। नवभारत टाइम्स की टिप्पणी है दिग्गी राजा पर बीजेपी का साध्वी अटैक। आर्थिक तंगी से जूझ रही जेट एयरवेज की उड़ान अस्थायी तौर पर बंद किए जाने की खबर भी अखबारों में प्रमुखता से है। पंजाब केसरी लिखता है रनवे सूत्री जेट एयरवेज, बैंकों ने 400 करोड़ का ऋण देने से किया इंकार। अमर उजाला ने लिखा है 20,000 नौकरियां भी खतरे में। दैनिक जागरण की टिप्पणी है नहीं मिले मदद के पंख, उड़ने की उम्मीद छोड़ जेट एयरवेज जमीन पर। देश के कई हिस्सों में आंधी तूफान से हुए जानमाल के नुकसान की खबर अखबारों ने सचित्र दी है। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में केंद्र सरकार की स्वीकारोक्ति दी है नेताओं की कमाई पता करना मुश्किल।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। पांचवें चरण के चुनाव के लिए पर्चे भरने का आज आखिरी दिन है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में बारिश से जुड़ी घटनाओं में मृतकों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। जेट एयरवेज द्वारा अपनी उड़ानों पर अस्थायी रोक के बाद नागरिक उड्डयन सचिव हवाई अड्डा और एयरलाइंस अधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।